डॉक्टर डेव मैथ्यूसन, रहस्योद्घाटन, व्याख्यान 21। प्रकाशित वाक्य 14 से 16। अनाज का पहला फल अंगूर। निर्णय और 7 बाउल निर्णय। 2024 डेव मैथ्यूसन और टेड हिल्डेब्रांट। यह रहस्योद्घाटन की पुस्तक पर अपने पाठ्यक्रम में डॉक्टर डेव मैथ्यूसन हैं। यह सत्र 21, प्रकाशित वाक्य 14 से 16, अनाज का पहला फल अंगूर का न्याय और 7 बाउल का न्याय है। हम दोनों को देख रहे हैं वास्तव में छवियों की एक श्रृंखला, जिसे लेखक ने अध्याय 14 में अंतिम निर्णय का वर्णन करने के लिए उपयोग किया है, क्योंकि यह भगवान के लोगों से संबंधित है जो अध्याय 12 और 13 में जानवर के साथ अपनी लड़ाई में दृढ़ रहे और सहन करते रहे, और उन लोगों का भाग्य भी जिन्होंने हार मान लिया, उन लोगों का भाग्य जिन्होंने जानवर का अनुसरण किया और उसकी पहचान की और उसकी पूजा और निष्ठा की। ऐसे 2 पाठ हैं जिन्हें मैंने पिछले अनुभागों में गलत तरीके से पढ़ा है, जिन पर मैं आपका ध्यान वापस आकर्षित करना चाहता हूँ। भाषा में हमने कहा कि 144:000 को पहला फल कहा जाता है, लेकिन ऐसा लगता है कि पहले फल की कल्पना भगवान के पूरे लोगों पर लागू होती है, न कि एक समूह और आने वाले और अधिक की प्रत्याशा पर, और मैंने पुराने नियम में सुझाव दिया है कि हम पाते हैं वह। जिन स्थानों को हम सबसे स्पष्ट रूप से पाते हैं वे यिर्मयाह 2:2-3 हैं। और यिर्मयाह 2:2-3 है, प्रभु का वचन मेरे पास आया, यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता, जाओ और यरूशलेम की सुनवाई में प्रचार करो, मुझे याद है तेरी जवानी की भक्ति, तूने दुल्हन की नाई मुझसे किस प्रकार प्रेम रखा और जंगल में मेरे पीछे पीछे चली, यद्यपि बिना बोए हुए देश में होकर भी इसराइल अपनी उपज की पहली उपज पाकर यहोवा के लिए पवित्रा हुआ। तो अब आप पाते हैं, मुझे लगता है, अध्याय 14 में उसी तरह से इस्तेमाल की गई कल्पना। 144:000 भगवान को समर्पित पहले फल हैं, जो इतिहास के अंत में भगवान के लोगों की संपूर्णता का जिक्र करते हैं, न कि एक समूह और एक और समूह की प्रत्याशा का। आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए दूसरा पाठ हमारा ध्यान वापस प्रकाशित वाक्य 14:17-20 तक ले जाना है। हमने यह कहा, यहाँ लेखक अविश्वासी मानवता के फैसले का वर्णन करने और चित्रित करने के लिए अंगूर की फसल की छवि का उपयोग करता है, जिन्होंने मेमने के बजाय जानवर का अनुसरण किया है, और लेखक भगवान के फैसले के प्रतीक के रूप में अंगूर की फसल की छवि का उपयोग करता है। जिस पाठ पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता था वह वास्तव में यशायाह 62 नहीं है, बल्कि अंत समय के न्याय के संदर्भ में यशायाह अध्याय 63 है। यशायाह अध्याय 63 और श्लोक 2 और 3 में मैं श्लोक 1 का सहारा लूंगा और श्लोक 1 का भाग पढ़ूंगा। यह कौन है जो वैभव का वस्त्र पहने हुए है, अपनी ताकत की महानता के साथ आगे बढ़ रहा है? मैं ही धर्म से बोलकर उद्धार करने में सामर्थी हूँ। तेरे वस्त्र रस के कुंड में रौंदते हुए के समान लाल क्यों हैं? मैंने अकेले ही अंगूर के कुंड में रौंदा है, राष्ट्रों में से कोई भी मेरे साथ नहीं था। मैंने अपने क्रोध में उनको रौंद डाला और क्रोध में उनको कुचल डाला। उनके खून के छींटे मेरे कपड़ों पर लगे और मैंने अपने सारे कपड़े खून से रंग लिए। तो यहाँ आपके पास स्पष्ट रूप से है, मुझे लगता है, 17 से 20 में अंगूर की फसल की इस भाषा की पृष्ठभूमि, अर्थात परमेश्वर को अपने क्रोध की मदिरा के कुंड में रौंदते हुए दर्शाया गया है, अर्थात राष्ट्रों को मदिरा के कुंड में देखा जाता है और उसका परिणाम वह लहू है जो उनसे निकलता है। दिलचस्प बात यह है कि यह पाठ अध्याय 19 में फिर से सामने आएगा, जहां सवार और सफेद घोड़ा खून से सने कपड़ों के साथ आते हैं। शराब के कुंड के खून से सना हुआ, मैं इसे लेता हूं। तो यह एक प्रकार की प्रत्याशा है जो अध्याय 19 में अधिक विस्तार से प्रकट होती है। इसलिए यशायाह अध्याय 63 और जोएल अध्याय 3 जैसे ग्रंथ और पुराने नियम में कहीं और शराब के कुंड और अंगूर की फसल और रौंदने की इस कल्पना के लिए पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं। मानवता पर ईश्वर के न्याय की छवि या प्रतीक के रूप में शराब का कुंड। लेकिन जैसा कि हमने कहा, यशायाह 63 में साथ ही यहाँ प्रकाशित वाक्य 14 में अंगूर के कुंड से जो बहता है वह अंगूर से बनी शराब नहीं है, बल्कि जो इससे बहता है वह भगवान के दुश्मनों का खून है। और इसका वर्णन बहुत दिलचस्प ढंग से किया गया है कि खून घोड़े की लगाम जितना ऊपर तक पहुंच रहा है या ऊपर जा रहा है, जो मुझे लगता है सैन्य कल्पना की याद दिलाता है। घोड़े केवल चरागाह में घूम रहे घोड़े नहीं हैं, बल्कि यह एक घुड़सवार सेना की छवि है, घोड़े जो युद्ध के लिए निकले हैं। तो अब खून घोड़ों की लगाम जितनी ऊंचाई और 1600 स्टेडियम की दूरी तक बहता है। जब हम प्रकाशित वाक्य 21 और 22 पर पहुंचेंगे तो हम स्टेडियम के बारे में अधिक बात करेंगे, लेकिन यह जानना पर्याप्त है कि यह एक बड़ी और महत्वपूर्ण दूरी है। तो आपके पास ईश्वर के न्याय के परिणाम के रूप में संपूर्ण रक्तपात की यह विभत्स भाषा है। अब मुझे लगता है कि जो हो रहा है वह फिर से यह है कि जॉन केवल स्टॉक भाषा और कल्पना का उपयोग कर रहा है। इस बार यह ईश्वर के न्याय की प्रकृति और अर्थ का वर्णन करने के लिए विशेष रूप से सर्वनाश पाठ से प्रकट होता है। इसलिए हमें शायद इसे शाब्दिक रूप से नहीं लेना चाहिए, जैसे कि इतिहास में किसी बिंदु पर कोई बाहर जा सकता है और भविष्य के फैसले में किसी समय घोड़े की लगाम तक खून बहता हुआ देख सकता है। वास्तव में मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था कि कोई सेना, विशेष रूप से 21वीं सदी या उसके बाद, घोड़ों का उपयोग करके लड़ना चाहेगी। तो जॉन केवल पुराने नियम से सामान्य कल्पना उधार ले रहा है ताकि भगवान को शराब के कुंड में रौंदते हुए और दुश्मनों के खून को बहते हुए चित्रित किया जा सके। लेकिन अब उन्होंने पाठक पर इस जानवर का अनुसरण करने वालों पर भगवान के फैसले की गंभीरता और सीमा और अद्भुतता के प्रभाव को और अधिक बढ़ाने के लिए सर्वनाशकारी कल्पना, सर्वनाशकारी साहित्य की छवियों को जोड़ा है। उदाहरण के लिए यह पाठ प्रथम हनोक से है। हमने प्रथम हनोक से दो बार पढ़ा है, एक महत्वपूर्ण सर्वनाश और चौथा एज़रा भी। मैं उन सर्वनाशों में से दो और अंश पढ़ना चाहता हूँ। उनमें से एक है एक हनोक अध्याय 100, जो पापियों के अंतिम न्याय, अधर्मियों के अंतिम न्याय की एक छवि है। पद एक से आरंभ करते हुए, उन दिनों में पिता को उसके पुत्रों समेत एक ही स्थान में पीटा जाएगा और भाई अपने मित्रों समेत मर जाएगा, यहाँ तक कि उनके खून की धारा बह निकलेगी, क्योंकि कोई अपने बेटों को या उनके बेटों को घात करने के लिए उनसे हाथ न रोक सकेगा। मुझे पद 3 पर जाने दीजिए, तो यह न्याय और रक्तपात में मृत्यु की छवि है। अब श्लोक 3 में घोड़ा पापियों के खून के बीच अपनी छाती तक चलेगा और रथ अपनी चोटी तक डूब जाएगा। स्पष्टतः घोड़े युद्ध के घोड़े हैं। तो पहले हनोक में ऊपर तक जाते खून की कल्पना पर ध्यान दें। यहाँ यह केवल घोड़ों की छाती तक है। लेकिन यदि आप चौथे एज़रा की ओर भी मुड़ते हैं, एक और महत्वपूर्ण सर्वनाश जिसे हमने देखा है, और ऐसा प्रतीत होता है कि जॉन चौथे एज़रा से निकले रूपांकनों को खींचता है, चाहे उसने चौथे एज़रा को पढ़ा हो या नहीं, वह अभी भी उन रूपांकनों से आकर्षित होता प्रतीत होता है, उस किताब में पाया जा सकता है। चौथे एज़रा का अध्याय 15, फिर से अंत समय के न्याय के संदर्भ में। बादलों को देखो, यह चौथा एज़रा 15 छंद 30 है। मैं 33 से 36, 34 से 36 तक पढ़ूंगा। पूर्व से और उत्तर से दक्षिण तक बादलों को देखो और उनका रूप बहुत खतरनाक है, क्रोध और तूफान से भरा हुआ है। तो अंत समय के न्याय की छवि और भगवान अपना क्रोध प्रकट कर रहे हैं। वे एक दूसरे पर टूट पड़ेंगे और पृथ्वी पर भारी आंधी चलाएंगे और अपनी अपनी आंधी चलाएंगे, और तलवार से घोड़े के पेट और मनुष्य की जांघ और ऊंट की पीठ तक खून बहेगा। तो ध्यान दें, हालांकि भाषा थोड़ी अलग है और जॉन ने घोड़ों की लगाम तक खून जाने का चित्रण किया है, आपको स्पष्ट रूप से अंतिम निर्णय के सर्वनाश पाठ में यह धारणा इतनी गंभीर और इतनी व्यापक है कि यह हो सकता है, और रक्तपात इतना भयानक था कि इसे घोड़े के पेट या छाती तक बहते खून के रूप में दर्शाया जा सकता है, और फिर जॉन इसे घोड़े की लगाम तक ले जाता है। तो मुझे लगता है कि जॉन जो कर रहा है वह केवल प्रथम हनोक और चतुर्थ एज्रा और अन्य जैसे सर्वनाशी ग्रंथों से एक सामान्य सर्वनाशकारी रूपांकन को चित्रित कर रहा है, न कि एक शाब्दिक दृश्य को चित्रित करने के लिए जैसे कि कोई इतिहास में इस समय मौजूद था। आप वास्तव में मैंने घोड़ों के पेट या लगाम से खून बहता हुआ देखा होगा, लेकिन पाठकों की भावनाओं और प्रतिक्रिया के आधार पर उन्हें भयावहता, भयानकता और सीमा देखने के लिए कल्पना का उपयोग करते हुए सर्वनाशी ग्रंथों से स्टॉक इमेजरी का उपयोग किया जाएगा। और अंत समय में भगवान के फैसले की गंभीरता, तो कल्पना यशायाह 63, शराब के कोल्हों में रौंदने की भाषा और सर्वनाशी ग्रंथों की भाषा, जिसे जॉन ने अंत समय के न्याय को चित्रित करने के लिए एक साथ लाया है, दोनों से कुछ कहता है। ये छवियां भगवान के फैसले के अर्थ और सीमा और प्रकृति का पता लगाने के लिए काम करती हैं, जरूरी नहीं कि यह कैसे होने वाला है। इसलिए अध्याय 14 से 20 में मैंने आपको सुझाव दिया है कि हम अंत समय के न्याय के दो दृश्य देखें। उनमें से एक सकारात्मक है, यानी अनाज की फसल का दृश्य पहले फल के रूप में भगवान के लोगों की फसल काटने का एक सकारात्मक दृश्य है, संभवतः अध्याय 14 श्लोक 4 और अब अध्याय 17 से 20 तक अंगूर की फसल का उपयोग करते हुए दुष्टों के न्याय या बुराई के निर्णय की एक नकारात्मक छवि, और इसलिए श्लोक 14 से 16 अध्याय 14 1 से 5 के अनुरूप हैं, और अनाज की फसल यानी 14 1 से 5 के अनुरूप है। 144,000 मेमने के साथ सियोन में विजयी होकर खड़े हुए, पाप और बुराई के साथ अपनी लड़ाई में विजयी हुए, और शैतान और जानवर और अब परमेश्वर को पहली फल की फसल के रूप में प्रस्तुत किया गया। अब उस फसल को श्लोक 14 से 16 में दर्शाया गया है, और फिर स्वर्गदूतों के तीन संदेश, विशेष रूप से स्वर्गदूत 2 और 3, अब उन लोगों के लिए न्याय का संदेश घोषित करते हैं जो जानवर का अनुसरण करते हैं, उन लोगों के लिए जिनके पास जानवर का निशान था, उसकी छवि की पूजा की, निष्ठा और पूजा का संकेत दिया, और जानवर इस मूर्ति पूजक ईश्वर विहीन साम्राज्य की पहचान की। अब उनके न्याय की स्थिति को श्लोक 17 से 20 में अंगूर की फसल के रूप में दर्शाया गया है। तो कुल मिलाकर अध्याय 14 छवियों की एक असंबद्ध अंधाधुंध श्रृंखला होने के बजाय अध्याय 14 अलग अलग छवियों का उपयोग करता है, जैसे कि 144 सियोन पर्वत पर विजयी हुए, पहला फल बेबीलोन का पतन, निर्णय की भाषा के रूप में परमेश्वर के क्रोध का प्याला उंडेला जा रहा है, और धुआं हमेशा हमेशा के लिए ऊपर उठता जा रहा है, धुआं और गंधक हमेशा हमेशा के लिए डूबता जा रहा है, फसल के दृश्य, गेहूं या अनाज की फसल, अंगूर की फसल। जॉन अध्याय 12 और 13 में उन लोगों के भाग्य का पता लगाने के लिए विभिन्न कल्पनाओं का उपयोग करता है। अध्याय 12 और 13 में वे लोग जिन्होंने समझौता करने से इनकार कर दिया, जिन्होंने पीड़ा और मृत्यु के बिंदु तक भी विरोध किया, जिन्होंने उस लड़ाई का जवाब दिया जो शैतान छेड़ता है, संत जिन्होंने समझौता करने से इनकार कर दिया, जिन्होंने इसके बजाय सहन किया और अपनी वफादार गवाही को बनाए रखा, अब उन्हें सियोन पर्वत की 144,000 की उपस्थिति और अनाज की फसल और पहले फलों की छवियों के साथ वर्णित किया गया है। लेकिन अध्याय 12 और 13 में वे लोग हैं जिन्होंने चर्च और दुनिया में समझौता किया है, इसलिए हमें इसे विशेष रूप से चर्च के लिए सकारात्मक और दुनिया के लिए नकारात्मक छवियों के रूप में नहीं पढ़ना चाहिए। नहीं, नकारात्मक छवियां चर्च में उन लोगों के लिए भी हैं जो समझौता करते हैं और अपने वफादार गवाह को बनाए रखने से इनकार करते हैं। उनके लिए न्याय के समय परमेश्वर के क्रोध की छवियां बेबीलोन का विनाश परमेश्वर का क्रोध बिना मिश्रित शराब के एक प्याले के रूप में बाहर आया, धुआं और गंधक का हमेशा के लिए ऊपर जाना, परमेश्वर के क्रोध की शराब की कोल्हू में चलना, ये सब उन छवियों में अब अध्याय 12 और 13 में उन लोगों के भाग्य को दर्शाया और चित्रित किया गया है जो जानवर के साथ समझौता करते हैं। तो अब अध्याय 14 न्याय के एक अंतिम दर्शन की ओर ले जाता है, या मुझे खेद है, वास्तव में न्याय और मुक्ति दोनों के एक अंतिम दर्शन की ओर ले जाता है, और वह अध्याय 15 और 16 में है। अध्याय 15 हमें बताता है कि क्या अधिक विस्तार से बताया जाएगा अध्याय 16 में, और वह 7 अंतिम विपत्तियां हैं, और हम देखेंगे कि ये छवियां कैसे जुड़ती हैं। लेकिन 7 आखिरी विपत्तियां भगवान के साथ आखिरी फैसले होंगी, लेकिन इसके बीच में अध्याय 15 छंद 1-4 में हम अंत समय के उद्धार का एक और दर्शन पाते हैं। तो हम मोक्ष के दर्शन और उसके बाद न्याय के दर्शन का एक और मिश्रण विकल्प खोजने जा रहे हैं और हम उसके संबंध के बारे में थोड़ी बात करेंगे। लेकिन जब हम अध्याय 15 और 16 के बारे में सोचते हैं तो अध्याय 15 में दोहरा कार्य प्रतीत होता है। सबसे पहले अध्याय 15 7 कटोरे अनुक्रम भगवान के क्रोध के साथ कटोरे के अनुक्रम का परिचय देता है जो अध्याय में डाला जाता है 16। तो एक ओर अध्याय 15 अध्याय 16 के परिचय के रूप में कार्य करता है। हालांकि यह परमेश्वर के लोगों को उस विजय के कारण मेने की प्रशंसा करते हुए भी दर्शाता है जो उसने उन्हें अध्याय 15 और 2-4 में दी है। तो एक बार फिर हम इस प्रकार की इंटरलॉकिंग चल रही है। ध्यान दें कि श्लोक 15 कैसे शुरू होता है, मैंने स्वर्ग में एक और स्वर्गदूत देखा, एक महान और अद्भुत चिन्ह, 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 अंतिम विपत्तियां थीं। आखिरी क्योंकि उनके साथ परमेश्वर का क्रोध पूरा हो गया है। अब आप श्लोक 5 पर जा सकते हैं, और मैं स्वर्ग में मंदिर और गवाही के तंबू को देखता हूँ, और 7 स्वर्गदूत 7 अंतिम विपत्तियों के साथ मंदिर से बाहर आए। तो पद 1 में वह 7 स्वर्गदूतों को 7 अंतिम विपत्तियों के साथ देखता है। अब श्लोक 5 में और इसके बाद वह 7 स्वर्गदूतों का वर्णन करता है जो 7 अंतिम विपत्तियों को कटोरे के रूप में लेकर पृथ्वी पर उंडेलने वाले थे। तो आप छंद 2-4 हटा सकते हैं और कथा बहुत अच्छी तरह से प्रवाहित होगी। लेकिन यहाँ हमें उस इंटरलॉकिंग का एक और उदाहरण मिलता है जिसे हमने प्रकाशित वाक्य में कहीं और देखा है। श्लोक 1 7 अंतिम विपत्तियों के साथ 7 स्वर्गदूतों की कथा शुरू करता है, लेकिन फिर यह एक ऐसे दृश्य से बाधित होता है जो एक अर्थ में अध्याय 14 से संबंधित लगता है, अंतिम मुक्ति का एक और दृश्य लेकिन अलग कल्पना में, जहां एक बार फिर हम भगवान को पाते हैं। लोग खड़े होकर मूसा का गीत और मेमने का गीत गा रहे थे। तो अध्याय 15 एक स्तर पर अध्याय 14 से जुड़ता प्रतीत होता है जो मोक्ष की एक और छवि है, लेकिन यह अध्याय 16 से भी जुड़ता है और एक परिचय प्रदान करता है जो इसके बाद आता है। तो आपके पास यह इंटरलॉकिंग विशेषता है कि 7 स्वर्गदूतों और उनकी विपत्तियों को पद 1 में पेश किया गया है। यह भगवान के लोगों के समुद्र के किनारे खड़े होकर मूसा का गीत गाते हुए मेने द्वारा गाते हुए एक दृश्य से काटा गया है, और यह उस गीत को रिकॉर्ड करता है, और फिर श्लोक 1 में दृश्य को फिर से उठाया गया है जिसमें स्वर्गदूत अपने कटोरे उंडेलने के लिए तैयार होकर मंदिर से बाहर आ रहे हैं, और फिर अध्याय 16 7 कटोरे में से प्रत्येक को उंडेलने का वर्णन करता है। अब मैं आपको अध्याय 15 पढ़कर सुनाता हूँ जो बहुत छोटा अध्याय है। मैंने स्वर्ग में देखा और उस शब्द पर ध्यान दिया जो मैंने फिर से देखा, दृष्टि के एक और खंड को चिह्नित किया। मैंने स्वर्ग में एक और महान अद्भुत चिन्ह देखा। सात स्वर्गदूतों के पास सात अंतिम विपत्तियां थीं, क्योंकि उनके साथ भगवान का क्रोध अब पूरा हो गया था। और मैंने देखा कि आग से मिश्रित कांच का समुद्र जैसा दिख रहा था, और समुद्र के किनारे वे लोग खड़े थे जिन पर विजय प्राप्त हुई थी। जानवर और उसकी छवि आपको फिर से अध्याय 13 और अध्याय 14 से जोड़ती है। अब मुझे लगता है कि यह वही समूह है जो उन 144,000 लोगों का है जिन्होंने अध्याय 13 और अध्याय 14 से जानवर और उसकी छवि पर और अध्याय 13 श्लोक 18 में उसके नाम की संख्या पर विजय प्राप्त की है। उनके पास परमेश्वर द्वारा दी गई वीणाएं थीं और उन्होंने परमेश्वर के सेवक मूसा का गीत और गीत गाया, और उन्होंने मेमने का गीत गाया। और यहाँ आपके कार्य महान और अद्भुत हैं, हे प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके मार्ग न्यायपूर्ण और सच्चे हैं। युगों युगों के राजा, राजा हे यहोवा, युग युग के लोग जो तुझ से नहीं डरेंगे और तेरे ही नाम की महिमा करेंगे, वे पवित्र हैं। सब जातियां आकर तेरे सामने दंडवत करेंगी, क्योंकि तेरे धर्म के काम प्रकट हुए हैं। इसके बाद मैंने दृष्टि की और स्वर्ग में और उस मंदिर में जो साक्षी पत्र के तंबू में है, वह खुला, और सात स्वर्गदूत सातों विपत्तियों के साथ मंदिर में से निकले। वे साफ चमकदार मलमल के कपड़े पहने हुए थे, और उन्होंने अपनी छाती पर सोने की पट्टियां पहन रखी थीं। तब उन चार प्राणियों में से एक ने उन सात स्वर्गदूतों को सात सोने के कटोरे दिए जो परमेश्वर के क्रोध से भरे हुए थे, जो युगानुयुग जीवित है। और मंदिर परमेश्वर की महिमा और उसकी शक्ति के धुएं से भर गया, और जब तक सातों स्वर्गदूतों की सात विपत्तियां पूरी न हुई तब तक कोई मंदिर में प्रवेश न कर सका। अब संक्षेप में अध्याय 15 में मुझे लगता है कि जो चल रहा है वह यही है। लेखक सात आखिरी विपत्तियों का वर्णन करने के लिए लगभग तैयार है। यह विपत्तियों का तीसरा चक्र है जो सात मुहरों से शुरू होता है, फिर सात तुरहिया, और अब सात कटोरे उंडेले जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन ऐसा करने से पहले लेखक हमें अध्याय 14 और 13 से जोड़ते हुए एक और छवि देता है, जो विजी हैं उनकी एक छवि। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि आप देखें कि उन लोगों की छवि 2 से 4 में कैसे चित्रित की गई है, और मुझे लगता है कि यह देखने की कुंजी है कि यह केवल छंद 2 और 3 का कुछ अंधाधुंध सम्मिलन नहीं है। दूसरे शब्दों में अध्याय 15 सात अंतिम विपत्तियों की शुरुआत करता है, लेकिन आपके पास 2 और 4 हैं, समुद्र के किनारे खड़े संतों की यह तस्वीर मेमने का गीत गा रही है। ये सिर्फ एक तरह की रुकावट नहीं है। इसके बजाय मुझे लगता है कि इसका एक उद्देश्य है, क्योंकि लेखक भगवान के अंतिम निर्णयों को जोड़ने या बताने के लिए तैयार है, और अध्याय 17 और उसके बाद भगवान के निर्णयों की अंतिम प्रस्तुति तक ले जा रहा है। अब इससे पहले कि वह कटोरे के फैसले के रूप में अंतिम सात निर्णयों के संदर्भ में भगवान के क्रोध का वर्णन करना शुरू करे, लेखक एक अंतिम छवि में भगवान के लोगों को समुद्र के सामने खड़े होकर गाते हुए चित्रित करना चाहता है। मूसा और मेमने का गीत अभी भी 13 या 14 से जुड़ रहा है, लेकिन अब वह इसे एक अलग तस्वीर से देख रहा है। वह एक अलग छवि का उपयोग कर रहा है। अध्याय 15 उन्हीं दृश्यों का वर्णन करता है जो हमने 14 में देखे थे। माउंट सियोन में 144,000 पहले फलों की अनाज की फसल। अब हम एक ही दृश्य को अलग अलग छवियों में देखते हैं, लेकिन जॉन क्या कर रहा है? इन्हें जोड़ने की कुंजी निर्गमन की भाषा है। जॉन ईश्वर के अंतिम निर्णय को निर्गमन के रूप में चित्रित करना चाहता है, अर्थात निर्गमन विपत्तियों के संदर्भ में, जिसकी चर्चा वह अध्याय 16 में करेगा। लेकिन ऐसा करने से पहले वह हमें फिर से याद दिलाना चाहता है कि इसके बीच में भगवान के लोग विजयी होंगे, इसलिए श्लोक 2 और 4 कालानुक्रमिक रूप से नहीं घटित होते हैं। दूसरे शब्दों में अध्याय 15 श्लोक 2 और 4 में कांच के समुद्र के सामने संतों का यह दर्शन मूसा और मेन्ने का गीत गाते हुए पहले नहीं होता है और फिर कटोरे उंडे ले जाते हैं। मुझे लगता है कि यह शायद विपरीत है, लेकिन जॉन जो कर रहा है वह यह है कि अंतिम निर्गमन विपत्तियों के बारे में बताने से पहले वह आपको संतों के लिए उसी तरह परिणाम दिखाना चाहता है जैसे पुराने नियम में भगवान के लोग लाल सागर में गए, विजय हुए और मूसा का गीत गाया। इन विपत्तियों के दूर हो जाने के बाद यही होगा। फिर भी परमेश्वर के लोगों को इन विपत्तियों से कोई नुकसान नहीं होगा और उन्हें परमेश्वर के क्रोध का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इसके बजाय एक्सोडस भाषा में 15 और 6 अध्याय 15 और 16 में इस एक्सोडस कहानी के हिस्से के रूप में लेखक ठीक सामने इससे पहले कि वह कभी भी अध्याय 16 में 7 कटोरे के रूप में एक्सोडस प्लेग के फैसले का वर्णन करता है, वह परमेश्वर के लोगों को चित्रित करना चाहता है कि उस समय के बाद वे विजय होकर उभरेंगे और समुद्र के किनारे खड़े होंगे, लाल सागर को पार करेंगे, समुद्र के किनारे खड़े होंगे और मूसा का गीत गाएंगे। अब यह दिलचस्प है कि 2 से 4 में लेखक ने कई छवियां खींची हैं जो मुझे लगता है निर्गमन को स्पष्ट रूप से याद दिलाती हैं। लेकिन इस वृत्तांत के बारे में 2 बातें दिलचस्प हैं। नंबर 1 पर समुद्र को कांच के समुद्र के रूप में वर्णित किया गया है। जाहिरा तौर पर यह प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 में वही समुद्र था, कांच का समुद्र जो सिंहासन के सामने खड़ा था। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि कुछ यहूदी साहित्य में लाल सागर को कांच के समुद्र के रूप में वर्णित किया गया है। पुराने नियम के बाहर कुछ यहूदी ग्रंथ हैं जहां कुछ रब्बी साहित्य में लाल सागर को कांच के समुद्र के रूप में वर्णित किया गया था। साथ ही हमने पहले ही नोट कर लिया है कि यशायाह 51 और श्लोक 9 जैसे पाठ में लाल सागर को अराजकता के समुद्र, समुद्री राक्षस के घर के रूप में चित्रित किया गया था। इसलिए आपके पास यहाँ जो हो सकता है वह समुद्र की एक तस्वीर है, अराजकता, समुद्री राक्षस का घर जो पहले निर्गमन से शुरू होकर भगवान के लोगों को धमकाता है। वह समुद्र अब परमेश्वर की संप्रभुता द्वारा शांत कर दिया गया है। अब हम पाते हैं कि यह कांच का समुद्र है, भगवान अराजकता और बुराई के समुद्र, अराजकता और बुराई के लाल सागर पर अपनी संप्रभुता दिखा रहे हैं। तो अब भगवान के लोगों को उसी के माध्यम से उभरने के रूप में वर्णित किया गया है। अब वे विजयी हैं। अराजकता और बुराई का समुद्र शायद अध्याय 12 और 13 की घटनाओं को दर्शाता है। शैतान द्वारा महिला पर पानी की धारा बहाने का प्रयास, उसकी संतानों को मारने का प्रयास, वह समुद्र अब भगवान की संप्रभुता से शांत हो गया है। अब वे संकट के उस दौर से बाहर आ गए हैं और वे प्राचीन इसराइलियों की तरह समुद्र के किनारे खड़े हैं और वे मूसा का गीत गाते हैं। इस स्तोत्र के बारे में दूसरी दिलचस्प बात यह है कि इसके लेखक मूसा का गीत है जो निर्गमन अध्याय 15 में उनके लाल सागर से निकलने के बाद गाया गया था। व्यवस्था विवरण के अंत में मूसा का एक और गीत भी है, लेकिन यह गीत उनसे मिलता जुलता नहीं है, विशेष रूप से निर्गमन अध्याय 15 के गीत से। जॉन ने स्पष्ट रूप से इस गीत को सुनने और इस गीत को रिकॉर्ड करने में जो किया है उसने यशाया अध्याय 60 और अन्य जगहों से कई अन्य पुराने नियम के ग्रंथों को लिया है कि सभी ईश्वर की पवित्रता और अपने लोगों की ओर से बुराई का न्याय करने के साथ साथ अपने लोगों के लिए मुक्ति प्रदान करने के उनके शक्तिशाली न्यायपूर्ण कार्यों का जश्न मनाते हैं। इसलिए यदि आप पीछे जाएं और इसकी तुलना करें तो यहां मूसा का गीत वास्तव में निर्गमन 15 के गीत से बहुत मिलता जुलता नहीं है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जॉन एक तरह से इसे मेमने का गीत भी कहकर जॉन एक नए गीत का निर्माण कर रहा है। वह एक नया गीत गाते हुए सुनता है और इसलिए वह अन्य पुराने नियम के ग्रंथों को लाता है जो अपने लोगों के लिए मुक्ति प्रदान करने और न्याय करने में, साथ ही पृथ्वी के राजाओं का न्याय करने और उनकी महिमा और उनके नाम को प्रदर्शित करने में भगवान की जीत का जश्न मनाते हैं। तो फिर यह जो करता है वह यह है कि यह परमेश्वर के न्याय के कारण को इंगित करता है। परमेश्वर का निर्णय न केवल उसके लोगों को बल्कि उसके नाम और उसके पवित्र चरित्र को भी प्रमाणित करने के लिए है। दिलचस्प बात यह है कि यह गीत यह भी अनुमान लगाता है कि अध्याय 21 में और अधिक विस्तार से क्या विकसित होने वाला है। इसलिए हम अंत के स्नैपशॉट देख रहे हैं जो अध्याय 21 में पूर्ण प्रकटीकरण की ओर ले जाएंगे। जब यह भजन समाप्त हो जाएगा और राष्ट्र आकर तुम्हारे सामने आराधना करेंगे क्योंकि तुम्हारे धर्मी कार्य प्रकट हो गए हैं, तो हम देखेंगे कि अध्याय 21 में राष्ट्र आराधना करने के लिए नए यरूशलेम में आएंगे। अध्याय 21 में विस्तृत खुलासा। तो यह दृश्य प्लेग अनुक्रम के आगे के विकास के लिए दृश्य तैयार करता है जिसे लेखक श्लोक 5 में लौटाता है। और यहाँ अब मुहरों या तुरही के बजाय हमने देखा कि तुरही का उपयोग किया जा सकता है, पुराने नियम में निर्णय की प्रत्याशा के रूप में निर्णय कहा जाता है। यहाँ बैल मुख्यतः एक स्तर पर पुरोहिती सेवा का संकेत देते हैं। बैल टैबरनेकल या मंदिर भाषा की एक और विशेषता है। और मुझे वापस जाने दो। दिलचस्प बात यह है कि श्लोक 5 शुरू होता है, इसके बाद मैंने स्वर्ग के मंदिर अर्थात गवाही के तंबू को देखा। यह दिलचस्प है क्योंकि गवाही के तंबू का उपयोग निर्गमन में किया गया था, विशेष रूप से निर्गमन में, लेकिन व्यवस्था विवरण के माध्यम से निर्गमन उस तंबू को संदर्भित करने के लिए जो जंगल में स्थापित किया गया था। इसलिए मुझे लगता है कि गवाही के तंबू के रूप में मंदिर का यह संदर्भ लेखक का मंदिर को गवाही के तंबू के रूप में पहचानकर निर्गमन रूपांकन को आगे जारी रखने का तरीका है जो जंगल में इज़राइल के साथ था। अब निर्गमन विपत्तियों के अनुरूप जो विपत्तियां फैलने वाली हैं, उन्हें बैल के रूप में पहचाना जाता है। यशाया अध्याय 51 में मुझे लगता है कि हम बैलों की भाषा को परमेश्वर के क्रोध के प्याले के संदर्भ में पाते हैं। तो यदि यह पृष्ठभूमि का हिस्सा है तो बैलों को भगवान के क्रोध के प्याले के साथ जोड़ा जा रहा है। भगवान के क्रोध के उपकरण के रूप में बैलों को बाहर निकालना पृथ्वी पर भगवान के क्रोध को बाहर निकालने के लिए एक उपयुक्त साधन होगा। अब यह दो अन्य दिलचस्प शब्दों से जुड़ा है। इनमें से एक है मंदिर में धुआं भर जाना और दूसरा यह कि फैसला पूरा होने तक कोई भी इसमें प्रवेश नहीं कर सकता। संभवतः मंदिर में भरने वाले धुएं की भाषा न केवल निर्गमन भाषा बल्कि यशाया अध्याय 6 श्लोक 1 और श्लोक 4 की भी याद दिलाती है। यशाया 6 एक महत्वपूर्ण दृश्य है, एक सिंहासन कक्ष का दर्शन जिसने रहस्योद्घाटन अध्याय 4 में जॉन के सिंहासन कक्ष के चित्रण को प्रभावित किया है। लेकिन अब यशाया अध्याय 6 में हम पढ़ते हैं, जिस वर्ष राजा उज्जियाह की मृत्यु हुई मैंने प्रभु को बैठे देखा सिंहासन पर ऊंचे और ऊंचे, और उसके वस्त्र की श्रृंखला ने मंदिर को भर दिया। अब श्लोक 4 पर जाएं। उनकी आवाजों की आवाज पर श्लोक 2 और 3 में पंख वाले प्राणियों की आवाज, उनकी आवाजों की आवाज पर दरवाजे और दहलीज हिल गईं और मंदिर धुएं से भर गया। सबसे अधिक संभावना है और विशेष रूप से निर्गमन 40 को ध्यान में रखते हुए भी, जहां यह तंबू में भगवान की उपस्थिति को भरने का संकेत देता है, यहां छवि भगवान की शानदार उपस्थिति और शक्ति की है जो अब पृथ्वी पर निर्णय जारी करने के लिए स्वर्गीय मंदिर को भर रही है। और ऐसा क्यों है कि कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता? संभवत केवल इस तथ्य का वर्णन है कि न्याय ऐसा है, ईश्वर की उपस्थिति इतनी सर्वव्यापी है, निर्णय देने में इतनी भयानक और भयानक है कि कोई भी इसका सामना नहीं कर सकता, कोई भी तब तक प्रवेश नहीं कर सकता जब तक कि न्याय का यह कार्य नहीं हो जाता। तो अब परमेश्वर के लोगों को विपत्तियां फैलने से पहले निर्गमन कल्पना में विपत्तियों के समय के बाद आगे कूदने के रूप में देखा जाता है। परमेश्वर के लोगों को सबसे पहले समुद्र के पार जाने के रूप में चित्रित किया गया है। समुद्र को भगवान के द्वारा शांत किया गया है। संप्रभुता, समुद्र के किनारे खड़ा होना, विजय होना, मूसा का गीत गाना, भगवान की पूजा करना और उनके द्वारा प्रदान की गई मुक्ति के कारण भगवान की स्तुति करना। इसके बाद यह निर्गमन जैसी घटना में तंबू के उद्घाटन की तैयारी करता है, जहां धुआं अब भर जाता है और हम अध्याय 16 में आने वाली सात निर्गमन जैसी विपत्तियों से परिचित होने के लिए तैयार हैं। और अध्याय 16 अब उन सात विपत्तियों और उन सभी का वर्णन करने जा रहा है, अध्याय 8 और 9 से भी अधिक। अध्याय 8 और 9 में हमने देखा कि अधिकांश विपत्तियां निर्गमन के अनुरूप बनाई गई थीं। अब और भी अधिक स्पष्ट रूप से इन सभी सात विपत्तियों का वर्णन मूल निर्गमन घटना से 10 निर्गमन विपत्तियों में से एक या अधिक के आधार पर किया गया है। एक बार फिर हमें संख्या 7 को 7 सटीक विपत्तियों की एक श्रृंखला के रूप में नहीं पढ़ना चाहिए जो इस क्रम में घटित होंगी, बल्कि 7 पूर्णता का संकेत देती हैं, और इसका पूरा बिंदु यह है कि निर्गमन विपत्तियां अभिप्रेत हैं या यहां विपत्तियां हैं निर्गमन को याद करने का मतलब है। तो एक बार फिर हम देखते हैं कि जॉन उस भाषा का उपयोग कर रहा है जो हमें विपत्तियों की सटीक प्रकृति और वे कैसी दिखती हैं इसकी पहचान करने में मदद करने के लिए नहीं है, बल्कि भगवान के फैसले के अर्थ, महत्व और निश्चितता का पता लगाने में हमारी मदद करने के लिए है। यह ऐसा है जैसे यूहन्ना उसी प्रकार कह रहा है कि परमेश्वर ने दुष्ट, मूर्ति पूजक और अत्याचारी लोगों का न्याय किया। निश्चित रूप से वह एक बार फिर दूसरे और मूर्ति पूजक, अत्याचारी लोगों का न्याय करेगा जो उसका विरोध करते हैं और खुद को भगवान के ऊपर स्थापित करते हैं। याद रखने योग्य दूसरी बात यह है कि मुझे लगता है कि अब हम प्रभु के दिन के और भी अधिक नजदीकी परिप्रेक्ष्य में हैं। याद रखें, मैंने कहा था कि ऐसा प्रतीत होता है कि क्या चल रहा है, प्रत्येक क्रम विपत्तियां, तुरही और बैल, उनमें से प्रत्येक प्रभु के दिन के साथ समाप्त होता है या आपको केवल समर्थन देने और अधिक सामग्री का वर्णन करने के लिए सीधे इसके पास लाता है। लेकिन मुझे लगता है कि क्या हो रहा है जब आप सील, तुरही और बैल की तुलना करते हैं, जबकि कुछ ओवरलैप प्रतीत होता है, विशेष रूप से एक्सोडस प्लेग के संदर्भ में तुरही और बैल के बीच, जबकि एक ही समय में कुछ ओवरलैप होता है, ऐसा प्रतीत होता है एक प्रकृति, विशेषकर तीव्रता की, विपत्तियां और अधिक गंभीर और तीव्र हो गई। उन्होंने मुहरों में पृथ्वी के एक चौथाई हिस्से को प्रभावित किया और तुरहियों ने एक तिहाई को प्रभावित किया और अब बैलों के साथ कोई सीमा नहीं है। वे सर्वव्यापी हैं और सभी लोगों और पूरी पृथ्वी को प्रभावित करते हैं। तो मैं इसे मानता हूं कि तुरहियों के साथ, या मुझे खेद है, बैलों के साथ अब आप एक करीबी परिप्रेक्ष्य में हैं। अब आप उन निर्णयों को देख रहे हैं जो तुरंत प्रभु के अंतिम दिन और अंतिम निर्णय तक ले जाएंगे। वास्तव में लेखक का कहना है कि ये अंतिम निर्णय हैं। ये ईश्वर के अंतिम निर्णय हैं जो उसके अंतिम समय के फैसले को उजागर करने से पहले हैं, जो फिर से प्रकाशित वाक्य के अध्याय 17 से अध्याय 20 में वर्णित हैं। तो यहां हमें अंत तक लाया गया है। मुझे अध्याय 16 पढ़ने दीजिए। तभी मैंने मंदिर से एक ऊंचे स्वर में यह कहते हुए सुना, मैं चाहता हूं कि तुम निर्गमन की पुस्तक में निर्गमन विपत्तियों के संबंध पर ध्यान दो। तब मैंने मंदिर में से किसी को ऊंचे शब्द से उन सातों स्वर्गदूतों से यह कहते हुए सुना, जाओ, परमेश्वर के क्रोध के सातों कटोरे पृथ्वी पर उंडेल दो। तब पहले स्वर्गदूत ने जाकर अपना कटोरा भूमि पर उंडेल दिया, और जिन लोगों पर उस पशु का चिन्ह था और जो उसकी मूरत की पूजा करते थे, उन पर कुरूप और पीड़ादायक फोड़े फूट पड़े। दूसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा समुद्र पर उंडेल दिया, और वह मरे हुए मनुष्य के लोहू के समान हो गया और समुद्र में सब जीवित प्राणी मर गए। तीसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा नदियों और जल के झरनों पर उंडेल दिया और वे लहू बन गए। तब मैंने जल के अधिकारी स्वर्गदूत को यह कहते सुना, हे प्रभु, तू जो है और पवित्र भी है, तू इन न्यायों में न्याय करता है, क्योंकि तूने ऐसा न्याय किया है, क्योंकि उन्होंने तेरे पवित्र लोगों और भविष्यद्वक्ताओं का लोहू बहाया है और तू उन्हें खून पीने को दिया है जिसके वे हकदार हैं। तब मैंने वेदी को उत्तर देते हुए सुना, हाँ, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे निर्णय सच्चे और न्यायपूर्ण हैं। फिर चौथे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेला और सूर्य को लोगों को आग से झुलसाने की शक्ति दी गई। वे इसकी तीव्र गर्मी से झुलस गए और उन्होंने परमेश्वर के नाम को कोसा जिसका इन विपत्तियों पर नियंत्रण था, लेकिन उन्होंने पश्चाताप करने और परमेश्वर की महिमा करने से इनकार कर दिया। ठीक वैसे ही जैसे फिरौन ने मूल निर्गमन में पश्चाताप करने से इनकार कर दिया था। पांचवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा जानवर के सिंहासन पर उंडेल दिया और उसका राज्य अंधकार में डूब गया। मनुष्यों ने पीड़ा में अपनी जीभें चबाई और उन्होंने अपने दर्द और घावों के कारण स्वर्ग के परमेश्वर को शाप दिया, परंतु उन्होंने जो किया उसके लिए पश्चाताप करने से इनकार कर दिया। तब छठे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा बड़ी नदी परात पर उंडेल दिया और पूर्व के राजाओं के लिए मार्ग तैयार करने के लिए उसका जल सूख गया। फिर मैंने बुरी आत्माओं को देखा जो मेंढकों की तरह दिखती थीं। वे बाहर निकले, तीन दुष्ट आत्माएं जो मेंढकों की तरह दिखती थीं। वे अजगर के मुंह से, पशु के मुंह से और झूठे भविष्यद्वक्ता के मुंह से निकले। वाकई बहुत अजीब छवि है। मेंढक तो तीन ही थे, लेकिन वे किसी तरह एक ही समय में तीनों मुंह से बाहर आ रहे थे। इसकी प्रतीकात्मक प्रकृति का स्पष्ट संकेत। वे राक्षसों की आत्माएं हैं जो चमत्कारी संकेत प्रदर्शित करती हैं ताकि वे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के महान दिन पर युद्ध के लिए उन्हें इकट्ठा करने के लिए पूरी दुनिया के राजाओं के पास जाएं। देख, मैं चोर के समान आता हूँ। धन्य वह है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र अपने पास रखता है कि वह नंगा न हो जाए और लज्जित न हो। तब उन्होंने राजाओं को उस स्थान में इकट्ठा किया जिसे इब्रानी में हरमगिदोन कहा जाता है। तब सातवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा हवा में उंडेल दिया और मंदिर के सिंहासन से यह आवाज आई कि हो गया, हो गया। फिर बिजली की चमक, गड़गड़ाहट, बादलों की गड़गड़ाहट और एक भयंकर भूकंप आया। जब से मनुष्य पृथ्वी पर आया है तब से ऐसा कोई भूकंप नहीं आया है। भूकंप इतना जबरदस्त था, महान शहर तीन भागों में विभाजित हो गया और राष्ट्रों के शहर ढह गए। परमेश्वर ने बड़ी बेबीलोन को स्मरण किया और उसे अपने क्रोध की जलजलाहट की मदिरा से भरा हुआ प्याला दिया। हर द्वीप भाग गया और पहाड़ों का पता नहीं चल सका। आकाश से लगभग 100 पाउंड के विशाल ओले मनुष्यों पर गिरे और उन्होंने भगवान को शाप दिया और नरक की विपत्तियों का लेखा जोखा किया, क्योंकि प्लेग बहुत भयानक था और यह हमें बुल प्लेग अनुक्रम के अंत में लाता है। उम्मीद है आप एक सोडस के साथ कुछ कनेक्शन उठाए। उस नोट से पहले उल्लेख करने योग्य एक दिलचस्प बात यह है कि सील 6 और 7 के बीच कोई अंतराल नहीं है। फिर यह परमेश्वर के न्याय का अंतिम रूप है जो तुरंत प्रभु के दिन और अंत समय के न्याय की ओर ले जाएगा। लेकिन उदाहरण के लिए बैल संख्या 1, घावों का बैल, निर्गमन अध्याय 9 में घावों के प्लेग जैसा दिखता है। बैल 2 और 3 एक्सोडस 7 से मिलते जुलते हैं जो पानी को खून में बदल देते हैं। बैल नंबर 4 में धूप लोगों को झुलसा देती है। निर्गमन अध्याय 9 बैल अध्याय 5 मिस्र के राज्य पर अंधकार छा गया है। निर्गमन अध्याय 10 वह है जहां मिस्र के राज्य पर अंधकार है। यहां जानवरों का साम्राज्य अंधकारमय हो गया है। ध्यान दें, अध्याय 8 के विपरीत जहां आंशिक अंधकार था, शैतान का पूरा साम्राज्य अब अंधकारमय हो गया है। बुल नंबर 6 में 3 मेंढक हैं, जो निर्गमन अध्याय 8 में मेंढक प्लेग से मिलते जुलते हैं। बैल संख्या 7 गड़गड़ाहट, बिजली, ओले और भूकंप निर्गमन 9 श्लोक 23 से मिलते जुलते हैं। फिरौन की तरह लोग अभी भी अध्याय 16 श्लोक 11 में पश्चाताप करने से इनकार करते हैं। तो स्पष्ट रूप से लेखक चाहता है कि हम निर्गमन विपत्तियों को याद करें, और दोहराने के लिए मुझे यकीन नहीं है कि मैं सटीक रूप से पहचान सकता हूं कि ये विपत्तियां कैसी दिख सकती हैं और जॉन के मन में वास्तव में क्या है। एक बार फिर, जैसा कि मैंने कहा है, जॉन की दिलचस्पी इस बात में हो सकती है कि हम विपत्तियों के धार्मिक महत्व और हमें निर्गमन की ओर वापस खींचकर ईश्वर के न्याय के अर्थ का पता लगाएं। हालांकि कुल मिलाकर यह अध्याय 8 और 9 की तरह मूर्ति पूजा पर, बुराई पर, ईश्वर विहीन दुष्ट साम्राज्य पर ईश्वर का निर्णय हो सकता है। कष्ट आध्यात्मिक और शारीरिक दोनों हो सकता है, लेकिन यहाँ स्पष्ट रूप से है, यह दुनिया के संसाधनों पर भरोसा करने की पूर्ण निरर्थकता और पूर्ण अंधकार को प्रदर्शित करने का एक और तरीका हो सकता है, जिसमें मानवता तब डूब जाती है जब वे एक बुतपरस्त, ईश्वर विहीन मूर्ति पूजक साम्राज्य की पूजा और निष्ठा के आगे झुक जाते हैं और उसका पालन करते हैं। लेकिन मुद्दा यह है कि अब कोई चेतावनी नहीं है। यह अंतिम निर्णय अंतिम समय के निर्णय से पहले का अंतिम निर्णय है। यह इस तीन प्रकार की मुहरों, तुरहियों और कटोरे में परमेश्वर के क्रोध की अंतिम अभिव्यक्ति है कि अब और अधिक विलंब नहीं होगा, अब तो बहुत जल्दी अंत आ जाएगा। तो सातवां कटोरा हमें सीधे अंत तक ले आता है। बाउल नंबर 7 स्पष्ट रूप से अंतिम निर्णय है और स्पष्ट रूप से हमें अंत तक लाता है। मैं सभी 7 कटोरे के बारे में विस्तार से बताने के बजाय बस कुछ अनूठी विशेषताओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं, क्योंकि हमने अध्याय 8 और 9 के संबंध में उनमें से कुछ का उल्लेख किया है। लेकिन मैं जिस चीज पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं वह कुछ दिलचस्प विशेषताएं, 3 या 4 दिलचस्प विशेषताएं और कटोरे में इस प्लेग अनुक्रम की 5 दिलचस्प विशेषताएं हैं। नंबर 1 दिलचस्प है, आप पाते हैं कि एक भजन स्थित है और तीसरे कटोरे में पेश किया गया है। तीसरा देवदूत अपना कटोरा उंडेलता है, लेकिन चौथे तक पहुंचने से पहले आपके पास एक भजन होता है। हमने प्रकाशित वाक्य में देखा है कि पूरी किताब में भजन अक्सर उन दृश्यों की व्याख्या करने का काम करते हैं जिन्हें जॉन अपने दर्शन में देखता है। अब इस भजन में श्लोक 5 के जवाब में गाया गया एक भजन शामिल है। मैं सोचता हूं कि यह मुख्य रूप से ईश्वर के न्याय की पुष्टि करता है। यह इन विपत्तियों को दूर करने में ईश्वर के न्याय की पुष्टि करता है। हो सकता है कि यह सिर्फ यही नहीं है, बल्कि इसमें शामिल सभी विपत्तियों को प्रदर्शित करने के लिए बनाया गया है, यहाँ तक कि वेदी भी आवाज करती है और जवाब देती है, हाँ भगवान सर्वशक्तिमान, आपके निर्णय सच्चे और न्यायपूर्ण हैं। यह दिलचस्प है कि वेदी की आवाज आती है। मुझे नहीं पता कि यह शायद गवाही स्थापित करने के लिए आवश्यक 2 या 3 गवाहों का एक और संदर्भ है, लेकिन न केवल स्वर्गदूत कहता है कि यह सच है और आपके निर्णय न्यायसंगत हैं, बल्कि अब एक दूसरा गवाह है, सिंहासन झंकार करता है और कहता है, हाँ प्रभु, तेरे निर्णय सच्चे और न्यायपूर्ण हैं। चाहे वह जानबूझकर किया गया हो या नहीं, 2 या 3 गवाहों के उस विषय, पुराने नियम के विषय पर आधारित मुझे यकीन नहीं है। लेकिन इस भजन का कार्य ईश्वर के न्याय की ओर ध्यान आकर्षित करना है। विशेष रूप से ध्यान दें, पानी के खून में बदलने की तीसरी विभीषिका से क्या संबंध है। अब श्लोक 6 कहता है, क्योंकि उन्होंने संतों का खून बहाया है, अब तुम उन्हें खून पिलाओ। इसलिए यह भजन विशेष रूप से भगवान को दोषी ठहराने और न्याय के न्याय और धार्मिकता को प्रदर्शित करने के लिए तैयार किया गया है, जो खून का फैसला वह बहा रहा है। और यहाँ फिर से हम इस सिद्धांत को देखते हैं कि निर्णय अपराध पर फिट बैठता है। दुष्ट दुष्ट साम्राज्य, जानवर, संतों का खून बहाता है। अब बदले में परमेश्वर उन्हें इस कटोरे के रूप में रक्त देता है, पृथ्वी पर रक्त की यह महामारी। श्लोक 12 एक और दिलचस्प विशेषता श्लोक 12 और उसके बाद छठे देवदूत में पाई जाती है। मेरी बाकी टिप्पणियां छठी और सातवीं गेंद से संबंधित होंगी। एक बार फिर लेखक ने फ्रात नदी का पता लगाया या उसका उल्लेख किया है। हमने इसका संदर्भ पहले अध्याय 9 में टिड्डियों की विपत्तियों या अंतिम समय की सेना की विपत्तियों के संबंध में देखा था। तो कोई कनेक्शन हो सकता है। हो सकता है कि जॉन यहां भी उसी चीज की कल्पना कर रहा हो। लेकिन हमने जो यूफ्रेट्स का उल्लेख सुझाया है वह रोम की उत्तरी सीमा की याद दिलाता है, जहां से उनके हमलावर जैसे कि पार्थियन आएंगे। लेकिन साथ ही हम उत्तर से आने वाली एक सेना के पुराने नियम के विचार को पाते हैं कि यह जॉन अब एक हमलावर सेना को याद करने या दिमाग में लाने के लिए उस भाषा का उपयोग कर रहा है। इसलिए हमें जॉन के इस सुझाव पर विश्वास नहीं करना चाहिए कि वस्तुतः एक फरात नदी है जो सचमुच सूखने वाली है। दरअसल आज की आधुनिक सेना में इसकी जरूरत किसे होगी? आपको नदी पार करने के लिए उसे सुखाने की जरूरत नहीं है। तुम इसके ऊपर से उड़ो। लेकिन जॉन एक हमलावर सेना की धारणा को उजागर करने के लिए ग्रीको रोमन पृष्ठभूमि और पुराने नियम से स्टॉक इमेजरी का उपयोग करता है। इसलिए जब वह कहता है कि वह अपना कटोरा परात में डालता है तो पाठक सोचने लगेंगे, यहाँ एक आक्रमणकारी सेना आती है। और जॉन जो देखता है, हालांकि जॉन जो देखता है वह पूर्व के राजा हैं। दूसरे शब्दों में पूर्व के राजाओं के लिए रास्ता तैयार करने के लिए पानी सूख गया। और मुझे नहीं लगता कि हमें विशेष रूप से यह पहचानने की कोशिश करनी चाहिए कि ये सेनाएं कौन हैं। यह बस एक आक्रमणकारी सेना की धारणा उत्पन्न कर रहा है। तो अब आपके पास पृथ्वी के राजा हैं जो फ्रात नदी को पार करते हैं, लेकिन फिर आपको मेंढकों के रूप में तीन बुरी आत्माओं से भी परिचित कराया जाता है। और उनकी पहचान मेंढकों से होने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन उनमें से एक कारण मेंढकों के पलायन प्लेग को भड़काना है। लेकिन अब आपके पास तीन मेंढक हैं और लेखक को यह स्पष्ट नहीं हो सका कि ये मेंढक क्या संकेत देते हैं। वह उन्हें राक्षसी प्राणी कहता है, लेकिन वह कहता है कि वे अजगर, जानवर नंबर एक और जानवर नंबर दो के मुंह से भी आते हैं, जिन्हें वह झूठा भविष्यवक्ता कहता है। इसलिए यह अब और स्पष्ट नहीं हो सका कि यह एक राक्षसी हमले का परिदृश्य है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये तीन मेंढक राष्ट्रों को धोखा देने और उन्हें युद्ध के लिए इकट्ठा करने में सक्षम हैं। अब यह श्लोक 15 द्वारा बाधित है, जिसे हम एक क्षण में देखेंगे, और फिर श्लोक 16 में युद्ध फिर से शुरू हो गया है। अब प्रश्न यह है कि पृथ्वी के इन राजाओं और उन राष्ट्रों के बीच क्या संबंध है, या सारी दुनिया के राजा? तो आपके पास परात पार करने वाले पूर्व के राजा हैं, फिर श्लोक 14 के अंत में पूरी दुनिया के राजा हैं। दोनों के बीच क्या संबंध है? कुछ लोग कल्पना करते हैं कि वे एक साथ लड़ रहे हैं, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि इसके बजाय यह केवल अंत समय की एक छवि है जो पृथ्वी के सभी राजाओं की धारणा को उद्घाटित करती है, लेकिन पूर्व से हमलावर ताकतों की धारणा को भी उद्घाटित करती है। लेखक एक ऐसी तस्वीर का निर्माण कर रहा है जिसमें सारी दुनिया एक अंत समय की लड़ाई के लिए एक साथ इकट्ठा हुई है, यानी स्वयं ईश्वर और उसके लोगों के खिलाफ लड़ाई करने के लिए, जैसा कि मुझे लगता है कि हम बाद में देखेंगे। तो मुद्दा पृथ्वी के राजाओं और पूर्व के राजाओं के बीच कुछ युद्ध को चित्रित करना नहीं है, बल्कि पृथ्वी के राजाओं और पूर्व के राजाओं के अंत समय के हमले में सहयोग को चित्रित करने के लिए चित्र बनाना है। एक अंत समय की लड़ाई जिसे लेखक आर्मागेडन की लड़ाई कहता है। अब इसका उल्लेख करने से पहले मुझे आर्मागेडन शब्द के बारे में कुछ कहना है, लेकिन इस लड़ाई के बारे में भी कुछ कहना है। सबसे पहले आर्मगेडन शब्द के साथ कठिनाई यह पहचानने की कोशिश करना है कि जॉन के मन में क्या है। कुछ लोगों ने कोशिश की है, जैसा कि ग्रांट ओसबोर्न ने अपनी टिप्पणी में सुझाव दिया है। कई टिप्पणियों ने इसे स्पष्टीकरण की दो संभावित श्रेणियों में विभाजित करके इसे पहचानने की कोशिश की है। कुछ लोगों ने इसे भौगोलिक रूप से व्याख्या करने की कोशिश की है, अक्सर काफी शाब्दिक रूप से, जैसा कि कहीं सुझाव दिया गया है। और समस्या यह है कि आर्मागेडन दो शब्दों से बना है, हिब्रू शब्द हार जिसका अर्थ है पर्वत और मेगिद्दो जो एक विमान, एक विस्तार या एक हवाई जहाज को संदर्भित करता है जिसे आप कहते हैं। पुराने नियम की लड़ाइयों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए पाएं, जैसे न्यायाधीश अध्याय 5 और 1 राजा 18, 2 राजा 23, 2 इतिहास 35। इसके अलावा जकरयाह अध्याय 12 में इस अंत समय की लड़ाई का उल्लेख है। आप पुराने नियम में मेगिद्दो, मेगिद्दो के विमान को युद्ध स्थल के रूप में पाते हैं। इसलिए कुछ लोगों ने आर्मागेडन, मेगिद्दो पर्वत का शाब्दिक वर्णन करने का प्रयास किया है। समस्या यह है कि मेगिद्दो के ठीक सामने कोई पहाड़ नहीं दिखता। इसलिए विद्वानों ने भौगोलिक रूप से यह वर्णन करने के लिए संघर्ष किया है कि यह कहां घटित हो सकता है। तो यह एक भौगोलिक व्याख्या है। स्पष्टीकरण का दूसरा सेट जिस पर ओसबोर्न ने प्रकाश डाला है वह व्युत्पत्ति संबंधी व्याख्याएं हैं, जैसे कि आर्मागेडन को देखना वास्तव में माउंट ऑफ असेंबली और मेगिद्दो के संबंध में कुछ भौगोलिक स्थान का जिक्र नहीं करना। हालांकि मुझे आश्चर्य है कि क्या आर्मागेडन, मेगिद्दो का पर्वत जॉन का स्वयं का निर्माण है जिसमें पहाड़ की कल्पना का उपयोग किया गया है, लेकिन यह प्रसिद्ध युद्धों के स्थान के रूप में पुराने नियम से मेगिद्दो पर भी आधारित है। यह कुछ कुछ वैसा ही होगा जैसे हम किसी संघर्ष या लड़ाई या युद्ध को संदर्भित करने के लिए वाटरलू या वियतनाम का उपयोग करते हैं। आप किसी के निजी वियतनाम या ऐसी ही किसी चीज का उल्लेख कर सकते हैं। यह किसी शाब्दिक स्थान पर लड़ाई को संदर्भित नहीं करता है, बल्कि यह एक प्रसिद्ध लड़ाई को किसी अन्य संघर्ष के प्रतीक या छवि के रूप में लेता है। तो मुझे आश्चर्य है कि क्या जॉन मेगिद्दो का उपयोग नहीं कर रहा है जो पुराने नियम में प्रसिद्ध लड़ाइयों का स्थान है, और अब मेगिद्दो के पर्वत शब्द को एक स्थान के रूप में जोड़ रहा है जो अंत समय की लड़ाई का प्रतीक है। और अब पृथ्वी के सभी राष्ट्र अंत समय की लड़ाई की तैयारी में प्रतीकात्मक रूप से मेगिद्दो के पर्वत पर आर्मागेडन में एकत्रित होते हैं। यहां समस्या यह है कि किसी युद्ध का वर्णन नहीं किया गया है। हमें नहीं बताया गया कि कोई लड़ाई होती है। हमें नहीं बताया गया कि क्या हुआ। मेरी राय में यह पाठ हमें अंतिम समय की लड़ाई के लिए तैयार करता है जिसका वर्णन बाद में प्रकाशित वाक्य में किया जाएगा, और वह प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 और सफेद घोड़े पर सवार है। फिर सबसे अंत में प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 भी है। अध्याय 20 के अंत में आप पाते हैं कि शैतान को रसातल से मुक्त किया जा रहा है। वह पृथ्वी के सभी राष्ट्रों को धोखा दे रहा है और युद्ध के लिए एक साथ इकट्ठा हो रहा है। उन्होंने पवित्र लोगों की छावनी को घेर लिया है और परमेश्वर स्वयं उन्हें स्वर्ग से निकलने वाली आग से नष्ट कर देता है। तो आपको कई लड़ाइयों के संदर्भ मिलते हैं। आपके यहां अंतिम समय की लड़ाई है जिसे आर्मागेडन की लड़ाई कहा जाता है। अध्याय 19 में आपका युद्ध है जहां मनुष्य का पुत्र दुश्मनों को हराने के लिए सफेद घोड़े पर निकलता है। और फिर आपके पास प्रकाशित वाक्य में अध्याय 20 के अंत में एक और लड़ाई है जहां शैतान सेनाओं को इकट्ठा करता है और वे बाहर जाते हैं और संतों के खिलाफ लड़ाई करते हैं, फिर भी वे भस्म हो जाते हैं। मैं आपको सुझाव दूंगा कि ये सभी लड़ाइयां संभवतः एक ही लड़ाई का संदर्भ देती हैं। दूसरे शब्दों में हमारी तीन अलग अलग लड़ाइयां नहीं हैं, इसके बजाय हमारी लड़ाई बिल्कुल वैसी ही है। इन तीनों में यह दिलचस्प है, आपके पास इन तीनों में युद्ध के लिए एकत्रित की जा रही सेनाओं की भाषा है। इसके अलावा अध्याय 20 और अध्याय 19 में हम ईजेकील अध्याय 38 और 39 अगोग और मैगोग से समान कल्पना का उपयोग करने जा रहे हैं, लेकिन मैं इसे स्वीकार करता हूं और हम इसे और अधिक विस्तार से देखेंगे जब हम अध्याय 19 और 20 में वास्तविक लड़ाइयों पर पहुंचेंगे कि ये तीनों लड़ाइयां एक ही को संदर्भित करने के अलग अलग तरीके हैं। और इसलिए हमारे यहाँ किसी युद्ध का वर्णन नहीं है क्योंकि हम केवल इसकी तैयारी देखते हैं। अंतिम युद्ध अध्याय 19 और अध्याय 20 में आने वाला है जहां यीशु मसीह और भगवान बस आते हैं और अपने दुश्मनों को हराते हैं। अब जब हम वहां पहुंचेंगे तो हमें यह पूछने की जरूरत है कि उन लड़ाइयों में क्या चित्रित किया जा रहा है, हम उन्हें कैसे लें और उन्हें किसी शाब्दिक लड़ाई, किसी आध्यात्मिक लड़ाई या कुछ और के रूप में समझें। लेकिन आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, श्लोक 15 में प्लेग अनुक्रम में एक और प्रकार की रुकावट पर ध्यान दें। देख, मैं चोर के समान आता हूं। धन्य वह है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र अपने पास रखता है कि वह नंगा न हो जाए और लज्जित न हो। मुझे लगता है कि यहां जो चल रहा है, एक बार फिर यह एक संकेत है कि अध्याय 16 अंत समय में घटनाओं के अनुक्रम को निर्धारित करने या अंत समय को चार्ट करने या बस हमारी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के उद्देश्य से नहीं है। अंत में क्या होने वाला है? इस सब के बीच में जॉन अपने पाठकों से अध्याय 2 और 3 में अपने पाठकों से प्रतिक्रिया देने के लिए एक कॉल डालता है, और मैं चाहता हूं कि आप ध्यान दें कि मुझे लगता है कि जो हो रहा है वह स्थिति की गंभीरता के कारण है। यह अंतिम युद्ध जो पृथ्वी पर होने वाला है, जॉन अध्याय 3 और 4 का हवाला देकर अपने पाठकों को सतर्क रहने के लिए बुला रहा है। देखो, मैं एक चोर की तरह आता हूं कि भाषा पर ध्यान दें। इसलिए लड़ाई छिड़ने से पहले जॉन अपने पाठकों को तैयार रहने की चेतावनी देना चाहता है, यानी मुझे लगता है कि यहां कॉल एक बार फिर वफादार रहने और समझौता करने से इनकार करने की है। इसी तरह वे तैयारी करते हैं, लेकिन चोर की तरह आने की भाषा पर गौर करें। यह सीधे अध्याय 2 और 3 से सामने आता है जहां मसीह ने सर्दीस के चर्च को चेतावनी दी थी कि यदि उन्होंने पश्चाताप नहीं किया तो वह एक चोर की तरह आएंगे। अध्याय 3 और श्लोक 3, मेरा मानना है कि यह था। साथ ही सार्डिस को जागते रहने और सतर्क रहने के लिए भी कहा गया है। और क्या आपको वह चर्च याद है जिसमें कहा गया था कि नग्न न घूमे बल्कि सच्चे सफेद कपड़े पहने? लौदीकिया का चर्च तो यह भाषा अध्याय 2 और 3 की भाषा को याद करते हुए बस जॉन के कहने का तरीका है, मुझे लगता है लड़ाई के महत्व और गंभीरता के कारण भगवान का अंतिम समय का निर्णय जो कि सतर्कता की मांग करता है, लोगों को समझौता करने से इनकार करना चाहिए, अपनी वफादार गवाही बनाए रखनी चाहिए, ऐसा न हो कि यह लड़ाई मसीह के चोर के रूप में आने जैसी हो जाए, ऐसा न हो कि यह लड़ाई उन्हें बिना तैयारी के पकड़ ले और उन्हें अनजान बना दे। इसके बजाय उन्हें सतर्क और वफादार रहना चाहिए और जागना चाहिए और उन्हें अपने कपड़े पहनने चाहिए ताकि न्याय के दिन वे नग्न और शर्मिंदा न पाए जाएं। तो श्लोक 15 एक सम्मिलन है जो हमें याद दिलाता है कि अध्याय 16 में पाठकों को अध्याय 2 और 3 में विश्वासयोग्यता बनाए रखने, समझौता करने से इनकार करने, बुतपरस्त रोम के साथ समझौते का विरोध करने और एक वफादार गवाह बनाए रखने के लिए प्रेरित करने का एक प्रेरक कार्य है, चाहे कोई भी हो क्या कीमत है। अब प्रकाशित वाक्य का अगला भाग अध्याय 17 और 18 है, जिसमें बेबीलोन और उसके विनाश का विस्तृत वर्णन है, लेकिन मैं अध्याय 16 के अंत में जो नोट करना चाहता हूँ वह यह है कि यह सातवें और आखिरी कटोरे के लिए पहले से ही तैयार है, जो आपको लाता है फैसले के अंतिम दिन तक। हटाए जा रहे द्वीपों की भाषा आदि पर ध्यान दें, लेकिन महान बेबीलोन पर भी ध्यान दें। परमेश्वर ने बड़ी बेबीलोन को स्मरण किया और उसे अपने क्रोध की मदिरा से भरा प्याला दिया। अध्याय 17 और 18 उस मुहर का एक और विस्तार होगा। मुझे खेद है, वह कटोरा महान बेबीलोन को याद करते हुए भगवान की वह अंतिम विपत्ति। अब अध्याय 17 और 18 में बेबीलोन, उसके वास्तविक स्वरूप और उसके अंतिम निर्णय के विवरण के साथ इसे और अधिक विस्तार से विकसित किया जा रहा है। यह रहस्योद्धाटन की पुस्तक पर अपने पाठ्यक्रम में डॉक्टर डेव मैथ्यूसन हैं। यह सत्र 21, प्रकाशित वाक्य 14 से 16, अनाज का पहला फल, अंगूर का न्याय और सात बाउल का न्याय है।